किती वर्षा लिहायचं एक करून
साडेपाच लावून सांगितलं आहे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण यशोमती नंदन ब्रज वर नागर नंदन ब्रज वर नागर गोकुल रंजन
Thank you.
గజన పాలన అసుర కుల నాశన నర Thank you.
है, परंतु वो सेवा नहीं करता है, इस
इसका मतलब है वो भावना वास्तव में नहीं है, क्योंकि यदि वास्तव में प्रेम है, वो भक्ति भाव है, तो वो सेवा तो हम करेंगे ही। तो जहां पे बिना कोई सेवा के, बिना सही भावना के, बिना कोई मैत्री के प्रेम का प्रदर्शन होता है, हम जान सकते हैं कि वो अधूरा है या हो भी सकता है कि नकली है। तो जहां सच्चा प्रेम है वहां मन बुद्धि वाणी काया के द्वारा हम निश्चित ही कुछ न कुछ सेवा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जब प्रभुपाद जी ने भक्ति शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में किया तो उन्होंने केवल डिवोशन नहीं रखा, डिवोशन मतलब प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, उन्होंने डिवोशनल सर्विस, सर्विस मतलब सेवा। तो वो कहना चाहते थे कि भक्ति का मतलब ये नहीं कि केवल हम मन ही मन में सोचें कि हम भगवान से प्रेम करते हैं परंतु कुछ सेवा नहीं करेंगे, भगवान के लिए कुछ त्याग नहीं करेंगे, कुछ परिश्रम नहीं करेंगे, अपने ऊपर कोई कष्ट नहीं लेंगे, तो फिर वो किस तरह का प्रेम है। सुबह हम एक माता जी का उदाहरण दे रहे थे जो कह रही थी कि हृदय में ही मेरा प्रेम है भगवान के प्रति, तो ये सब करने की क्या जरूरत है। और उत्तर ये निकला कि वास्तव में हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति तो आप अवश्य कुछ करोगे। जैसे कि जब बच्चे के प्रति आपका प्रेम होता है तो बच्चे के लिए भी आप सेवा करते हैं, रात रात जगते हैं, बहुत कष्ट लेते हैं, बहुत असुविधाएं सहन करते हैं, केवल हृदय में रख के आप बैठते नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जब भगवान की सेवा करते हैं तो उस भाव से तो होना चाहिए, साथ साथ में प्रत्यक्ष हमारे बुद्धि मन इंद्रियां वाणी इत्यादि सब का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये जो भजन शब्द होता है, भज, भज धातु, भगवान का भजन करना, भज का मतलब है संस्कृत में सेवा करना, प्रेम से, प्रेममयी सेवा। और भज धातु से आते हैं अन्य अनेक संस्कृत शब्द जैसे भजन, भक्ति, भक्त, ये सारे भज धातु से आते हैं। इसका मतलब है कि इनका सार है सेवा, आप सेवा निकाल दीजिए कुछ रहेगा नहीं। किसी भी प्रेम के संबंध में आप सेवा निकाल लीजिए तो प्रेम शून्य हो जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा, केवल दिखावा रह जाएगा, ऊपर ऊपर का रह जाएगा। तो उसी तरह से भगवान की भक्ति के पथ में ये सेवा बहुत आवश्यक है। कई लोगों की गलत धारणा ऐसी रहती है कि कर्म योग में हम बहुत क्रियाशील रहते हैं, कर्म करते हैं, ज्ञान योग में व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, अपने बुद्धि को चलाता है, और भक्ति योग में केवल हम भावुक रहते हैं, ना हम बुद्धि को ज्यादा चलाते हैं और ना हम कोई क्रियाशीलता का प्रदर्शन करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, भक्ति में भी कितनी क्रियाशीलता होती है। आज भी हमने देखा कितना भाग दौड़ कितने सारे भक्त कर रहे थे, अनेक भक्त कल शाम को यहाँ आए हुए, रात भर सोए नहीं, केवल हम सब के लिए प्रसाद बनाने के लिए। और कितने सारे भक्त हैं, इनकी लिस्ट यहाँ इतनी लंबी है कि आज पढ़ेंगे तो रात तक बैठना पड़ेगा। इतने भक्तों ने इतनी सेवा की क्योंकि क्योंकि वो भक्ति भावना है। और आप सब इतना समय निकाल कर आए यहाँ पे क्यों, भक्ति भावना थी। यहाँ आना ये भी एक सेवा है, बैठना सुनना ये भी एक सेवा है। इस तरह से भक्ति के पथ में क्रियाशीलता होती है और साथ साथ भावना भी प्रेम की और श्रद्धा की और उत्साह का होना चाहिए। यदि किसी भी कार्य करते समय जीवन में हम किसी न किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कार्य की क्या कीमत है। उसी तरह से भक्ति पथ में ऐसे बताया जाता है कि हमारे हर कार्य भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाना चाहिए, इसको सेवा कहते हैं। हमारा हर कार्य सेवा हो जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना अनुसृतस्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। श्रीमद् भागवत में भी ऐसे ही बताया गया है, अपनी काया से अर्थात शरीर से, वाचा अपनी वाणी से, मनसा मन से, इंद्रियैव अपने इंद्रियों से, मनसा बुद्धि अपने मन बुद्धि इंद्रियां शरीर वाणी सबसे क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण या श्री नारायण की सेवा करनी चाहिए। नारायण यदि समर्पयामि करोमि यत्यत् सकलं परस्मै, जो भी मैं करता हूँ वो सब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। तो न केवल आके मंदिर में सेवा करना ये सेवा है कि हमारी चेतना यदि भक्तिमय हम बनाए तो हमारा हर कार्य सेवा होगा, क्योंकि ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तो मन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं सेवा में, जब भी हम सेवा कर रहे हैं तो मन में श्रद्धा भाव, गुरु परंपरा, कृष्ण वैष्णवों को प्रसन्न करने की इच्छा मन में रख के प्रसन्न चित्त से आगे बढ़ना चाहिए। मन से, मन का ये योगदान होता है सेवा में, साथ साथ में बुद्धि से हम ये योगदान सोच विचार करते हैं कि सेवा अच्छे से अच्छी तरह कैसे की जाए। वाणी से हम ये देखते हैं कि वाणी भगवान की सेवा के लिए अच्छे से अच्छी तरह से कैसे हो, ठीक बोले, हम कोई गलत नहीं बोले, भक्तों का दिल नहीं दुखाए, कुछ गलत नहीं बोले, हमारे शरीर आदि का प्रयोग भी तरह तरह की सेवाओं में हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे आज कितने भक्तों ने रसोई की, फिर बड़े बड़े जो पात्र है उठाकर वहां ले आए, प्रसाद वितरण हो रहा था, बहुत सी सेवाएं हो रही थी जिसमें शरीर का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो सेवा करने के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान योग में बुद्धि है, भक्ति योग में कोई बुद्धि नहीं, भावुकता है, ऐसा नहीं है। एक बार एक वृद्ध साधु थे, वो कहीं जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान में, उनके साथ में उनका एक नौजवान शिष्य जा रहा था जो कच्चा था, आध्यात्मिक जीवन बहुत कच्चा था, नया नया वो शिष्य बना था। तो जो वृद्ध साधु है वो घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे थे और उनके साथ साथ में उनका सामान वगैरह सब घोड़े के बगल में बांधा हुआ था। और वैसे भी साधु के पास इतने सारे सामान तो होते नहीं, थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो बांधा हुआ था। और उनका जो नौजवान शिष्य है वो बगल में चलते जा रहा था घोड़े के पास पास। तो हुआ ये कि शिष्य ने शायद सामान को ठीक से बांधा नहीं होगा, तो एक कमंडलू नीचे गिर गया वो सामान से। तो शिष्य ने उठाया नहीं, घोड़ा आगे चलता गया। तो साधु ने कहा, अरे उठाओ ना, क्यों गिरा है, उठाए क्यों नहीं। जय गुरुदेव, आपका आदेश हमारे प्राण है, जो भी आप आदेश करेंगे। तो उन्होंने आदेश दिया कि वो कमंडल उठाना, तो उठा दिया, उसके पहले नहीं उठा। फिर आगे जा रहे थे तो उनके दूसरे बगल से, घोड़े के दूसरे बगल से उनका बिस्तर नीचे गिर गया, तो उठाए नहीं। तो आगे चलते गए तो साधु ने देखा, अरे वो मेरा बिस्तर गिरा तुम उठा नहीं रहे, आपका आदेश शिरोधारी, आप हमारे लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं गुरुदेव, जय गुरुदेव, बिस्तर उठाया रखिए, जो भी आप बोलेंगे आपके लिए हम तैयार हैं करने। तो गुरु के आदेश देने पर तो उसके पहले नहीं। फिर गुरु सोच लगे ये शिष्य बड़ा अल्प बुद्धि वाला है, तो उन्हें कहा देखो तो तुम्हें क्यों नहीं उठाया बिस्तर, बोला आपने कहा नहीं तो ठीक है अभी लिख लो कि क्या क्या लिखना है। तो जो भी वहां ऊपर था सामान वो सबका नाम लिख लिया, देखो बिस्तर है, कमंडलू है, मेरी लाठी है, मेरा ये है, वो है, वस्त्र है, सबका पूरा लिस्ट बना दिया जो भी सामान घोड़े के ऊपर रखा हुआ था। इनमें से कुछ भी गिर जाए तो देखो उठाना, जय गुरुदेव आपका आदेश का पालन जरूर करेंगे। फिर चलते चलते अचानक क्या हुआ, घोड़े को कुछ परेशानी हो गई, घोड़ा उलट पड़ा तो बेचारे गुरुदेव नीचे गिर पड़े और ये शिष्य जो है ये आगे चलता गया और गुरुदेव पीछे से चिल्ला रहे हैं क्या कर रहे हो, मैं नीचे गिरा हूँ और तुम आगे चल रहे हो। तो शिष्य देखा गुरुदेव क्या है, गुरुदेव लिस्ट में नहीं है आप। तो गुरुदेव को बड़ा गुस्सा है, कैसा शिष्य मिल गया हमको, अरे मूर्ख शिष्य वो घोड़े से जो भी गिरे वो उठा दे, जो भी गिरा गुरुदेव जय गुरुदेव करें। तो फिर से गुरुदेव को घोड़े के ऊपर बिठा दिया, सब किया। अब घोड़ा आगे चलता गया, अब उसको प्रकृति का बुलावा आया तो वो हिचकिचाया नहीं, पशु लोग तो हिचकिचाते नहीं, तो घोड़े को रोक कर ये उठाने लगा, अरे क्या कर रहे हो ये सब, ऐसा क्या ये गोबर थोड़ी है, ये तो घोड़े का गोबर, ऐसा नहीं कर, आपने आपका आदेश जय गुरुदेव कि जो भी गिरे उसको उठाओ, तो उठा रहे। तो ये इस तरह की सेवा नहीं, सेवा के लिए भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धिहात्मा नावा अनुषित स्वभाव, बहुत कम बुद्धि भी नहीं जैसे ये शिष्य कर रहा था और बहुत ज्यादा बुद्धि भी नहीं चलानी चाहिए, जो बताया जाता है वो करना चाहिए, नहीं तो अपने बुद्धि चला कर कुछ एक का चार बना के कुछ दूसरा ही कर दिया तो वो सेवा नहीं होती है। इस तरह से सेवा के लिए हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, हमारे वाणी का उपयोग करना चाहिए, मन का उपयोग करना चाहिए, शरीर का, इंद्रियों का, सब कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ तक कि आत्मा भी, आत्मा का समर्पण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये धन मिल रहा है। वास्तव में यही हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम सबकी प्रवृत्ति, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सबकी प्रवृत्ति रहती है सेवा करने की। और जब हम सेवा नहीं करते हैं भगवान की तो अन्यों की सेवा करने में लग जाते हैं, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, हमारे ग्राहकों की सेवा, नहीं तो अपने इंद्रियों की सेवा, अपने शरीर की सेवा, कुछ न कुछ सेवा तो हमें करना ही है, तो क्यों ना हम भगवान की सेवा करें। प्रभुपाद जी वो कहानी बताया करते थे ना, आपने सुना होगा, एक व्यक्ति था जिसको सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करने की इच्छा थी और एक मालिक के पास गया, उसने देखा कि वो भी किसी के पास जा रहा है, उन्होंने पूछा कि आप किनके पास जा रहे हो, मुझे कर देना पड़ रहा है, तो वो आपसे ऊंचे हैं, हाँ तो मुझे उनकी सेवा में आप क्यों नहीं लगाते, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो देश के राजा तक पहुंच गए, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी, सबसे ऊंचे व्यक्ति की सेवा करना, सबसे बड़े व्यक्ति की। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो अभी मेरे जीवन का ध्येय पूर्ण हो गया, क्योंकि अब सबसे बड़े व्यक्ति के पास मैं हूं। और फिर देखने लगे कि ये भी कहीं जाता है, तो राजा के पीछे पीछे गए, देखा कि किसी जगह में गए और वहां वो जमीन पर लेट गए, तो पूछा राजा को, बाद में पूछा कि हुजूर आप क्या कर रहे थे, बोला मैं प्रणाम कर रहा था, किनको कर रहे थे? बोले भगवान को कर रहा था। अच्छा, वो भी आपसे बड़े हैं? हाँ, वो सबसे बड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी सेवा में आप लगा दीजिए। तो राजा ने कहा अवश्य। उसके बाद उनको भगवान की सेवा में लगा दिया और वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया। ये वास्तव में बांके बिहारी मंदिर की कथा है वृंदावन में। ऐसे ही हुआ। हमने छोटी संक्षेप में कहानी बताई क्योंकि समय कम है। और ये व्यक्ति वैसे हिसाब किताब खजांची की सेवा करता था सब जगह, परंतु अभी बांके बिहारी मंदिर में ऐसे कोई जगह खाली नहीं था सेवा के लिए। उन्होंने कहा केवल एक ही सेवा उपलब्ध है और वो है चौकीदारी की, द्वारपाल। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे तो सेवा ही करना है। तो फिर वो बाहर दरवाजे के बाहर रात भर रहता था, चौकीदारी करता था। और हुआ ये कि ठंडी का समय था और श्री कृष्ण तो आप तो जानते हैं रात को अपनी रासलीला करने निकल जाते हैं मंदिर से। तो श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उतर के जा रहे थे। अब उनको बंद दरवाजा थोड़ी रोक सकता है। तो श्री कृष्ण जब जा रहे थे उन्होंने देखा कि अरे अरे ये बेटा बेचारा सेवक ठंडी के मारे कांप रहा है। तो जब वो सो रहा था दरवाजे के बाहर, श्री कृष्ण ने सिंहासन से उतर के अपने शरीर में जो शाल था वो उस व्यक्ति के शरीर पे डाल के वो निकल गए। और श्री कृष्ण को लौटने में थोड़ी देर हो गई होगी। आए लेकिन अपना शाल नहीं लिया उस व्यक्ति से जो चादर के रूप में उनके ऊपर रख दिया था। जब पुजारी आए भगवान के सिंहासन के अंदर प्रवेश किया उन्होंने गर्भगृह में, देखा कि भगवान का चादर ही गायब है। तो सब जगह उन्होंने खबर फैले, देखो किसी ने चादर चोरी कर ली है भगवान की। तो सब जगह लोग इधर उधर फैले तो क्या देखते हैं कि चौकीदार वहां सोया हुआ है और उसके शरीर में ये चादर है भगवान का। तो सब ने उनको पकड़ लिया, अरे तुमने भगवान की चादर को चोरी कर लिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो चोरी नहीं की। और उनसे नहीं तो कैसे आता तुम्हारे पास ये चादर? तब भगवान ने स्वयं साक्षी देकर कहा कि नहीं, मैंने ही ये दिया है। उस दिन के बाद अभी वहां के जो पुजारी हैं बहुत जल्दी जल्दी पर्दा बंद करते हैं, ज्यादा समय के लिए दर्शन खुला नहीं रखते हैं क्योंकि उनको डर है कि भगवान अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि वो सिंहासन से भी कूद के निकल न जाए यहाँ से। एक बार तो ऐसे गए, इसलिए वो जल्दी जल्दी दर्शन बंद करते हैं। तो भगवान और भक्त के बीच में जो सेवा का एक संबंध रहता है बहुत मीठा रहता है, मधुर होता है। जिस तरह से भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हमें भगवान का दर्शन करने की इतनी इच्छा इस समय होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अभी भगवान को आंखों से देखने के लिए इतना आतुर न हो, इतनी अच्छी तरह से सेवा करो कि भगवान तुम्हें देखने के लिए आतुर होंगे। तो हमारी सेवा से हम भगवान के हृदय को आकर्षित करते हैं, फिर भगवान हमें देखना चाहते हैं, अपनी कृपा दृष्टि डालना चाहते हैं हमारे ऊपर। ये कौन भक्त है राधा गोकुलानंद मंदिर में जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं बिना कोई शिकायत के, बिना कोई बोझ मान के। फिर भगवान की कृपा आती हमारा जीवन सफल हो जाता है। देखिए सेवा करने के लिए हमने सुबह को कहा था कि चार भावनाओं से सेवा कर सकते हैं। किसी को याद है कौन सी वो चार भावनाएं हैं? भय, लोभ, कर्तव्य, प्रेम। तो जब भय में सेवा करते हैं तो वो सेवा को हम बोझ समझते हैं, या तो सेवा से भाग के जाना चाहते हैं। यदि हम भी हमारी सेवा करते करते मंदिर में अधूरा छोड़ के निकल जाते हैं जिम्मेदारी लेते हैं, नहीं करते हैं, अधाई छोड़ देते हैं या उसको बोझ समझते हैं, तो वो भी अच्छी सेवा नहीं होती है। तो सेवा कभी भी बोझ समझ के नहीं होना है और उसे भाग भी नहीं जाना है। फिर जब वो लोभ बन जाता है, फिर सेवा किस भाव से किया जाता है? भोग के भाव से, कि हम अभी भगवान का भोग कर रहे हैं, भगवान को हमारा भोग करना चाहिए, लेकिन हम भगवान का भोग करते हैं। कैसे? क्योंकि हमें बहुत सुविधाएं मिलेंगी भक्ति करते करते, क्योंकि हम कोई लाभ के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो रजोगुण में फिर भोग की भावना आ जाती है। तो चाहे हम गुरु भोगी बने, वैष्णव भोगी बने, कृष्ण भोगी बने, क्योंकि हम कुछ चाहते हैं भौतिक हमारे सेवा के माध्यम से। तो हमें ना बोझ बनाना है ना भोग करना है सेवा का। सेवा हमारे लिए एक त्याग है, प्रेम का त्याग है, एक समर्पण है, आत्मसमर्पण है। ये छोटी से छोटी चीज भी हम क्यों ना कर रहे हो, वो एक आत्मसमर्पण है। हर एक छोटा सा कार्य भी आत्मसमर्पण है। इसलिए भगवान के भक्ति के पथ में कोई ऊंची सेवा नहीं, कोई निम्न श्रेणी की सेवा नहीं, सभी सेवाएं भगवान की दृष्टि में एक समान है। जब श्री राम सेतु बना रहे थे समुद्र पार करने के लिए, हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ लेकर आ रहे थे और एक लहरें थी, वो धूल के कणों को डाल रही थी पुल बनाने के लिए। हनुमान को हंसी आई और राम ने कहा कि नहीं, तुम्हारी दोनों की सेवा मेरे लिए समान है, क्योंकि तुम दोनों अपना 100% ताकत लगा के हृदय पूर्वक सेवा कर रहे हो। तो हमें एक दूसरे की तुलना नहीं करनी है कि वो कितने सेवा कर रहे हैं और वो कम कर रहे हैं, वो ज्यादा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हाँ, प्रेरणा अवश्य हमें प्राप्त करना चाहिए, परंतु हमें ये देखना है कि हमसे कितनी ज्यादा सेवा होती है वो हमें करना है। अन्यों की परिस्थिति में हो सकता है वो कम कर सके या वो ज्यादा कर सके। जैसे धन की बात आई, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति ज्यादा धन से सेवा कर सके क्योंकि कृष्ण ने उनको धन दिया है। हो सकता है किसी को धन नहीं दिया है तो वो नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये पत्रम पुष्पम फलम तो यम का रास्ता है ना। तो सेवा करने के लिए तो कोई भी बंधन नहीं है। इसलिए इसी तरह हमें सेवा करते रहना चाहिए। सेवा करते करते जो आनंद हमें मिलेगा उसकी कोई सीमा नहीं है। वैसे शास्त्र में बताया जाता, कपिल देव भी कहते हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त होता है उसे ये पांच प्रकार की मुक्तियां भी नहीं चाहिए। वो गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम भी नहीं जाना चाहता है यदि वहां जाके भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। तो गोलोक वृंदावन में जाके हमें क्या करना है? भगवान की सेवा ही करनी है। वहां 2400 घंटे सेवा चल रही है भगवान की। उसी तरह से हमारी कामना, हमारी भावना भी ऐसे ही होनी चाहिए। बस हमारे सेवा में लगे रहे और सेवा भक्ति भाव से करें। सेवा करते समय कोई प्रजल्प नहीं, कृष्ण कथा होनी चाहिए। चाहे हम रसोई कर रहे हो, हम माला बना रहे हो, मंदिर मार्जन कर रहे हो, और गर्भगृह में तो नहीं बिल्कुल करना चाहिए। तो कोई भी सेवा करते समय हमारी चेतना को बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। इसलिए श्रवण कीर्तन हम ठीक से करेंगे तो हमारी सही भावना बन जाएगी सेवा के लिए। और जो लोग भगवान को कच्ची अवस्था में देखना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का आदेश बहुत उपयुक्त है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय में कहते हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मई भावों नो कीर्तना जो श्रवण से ध्यान से और दर्शन से अर्थात उनके अर्चा विग्रह का दर्शन से साथ साथ में अनुकीर्तन जो कीर्तन से मई भाव जो मेरे प्रति एक प्रेम या भक्ति उत्पन्न होता है न तथा सन्निकर्षेण प्रति याद ततो गृहान वो वैसा प्रेम वैसी भक्ति भावना मेरे सानिध्य में प्रत्यक्ष रहने से भी नहीं होता है इसलिए हे गोपियां तुम सब छोड़कर मेरे पास आए हो तुम वापस चले जाओ भी तुम बीच रात में आए हो सब परिवार को छोड़कर ये अच्छा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि केवल मेरे सानिध्य के लिए नहीं पीछे रहो ये सोचो कि मेरे बारे में तुम कैसे श्रवण कर सकते हो मंदिर में जाके मेरे विग्रह का दर्शन कैसे कर सकते हो मेरे ऊपर ध्यान कैसे कर सकते हो और मेरे नामों का गुणों का लीलाओं का कीर्तन कैसे कर सकते हो। ऐसे सेवा करने से प्रत्यक्ष बहुत ही श्रेष्ठ स्तर की भक्ति को हम प्राप्त कर पाएंगे और उस स्तर भावना के स्तर में जो हमारी सेवा होगी वो उत्कृष्ट गुणवत्ता की सेवा होगी। यदि हमारे सही भावना से हम सेवा नहीं करेंगे तो भगवान को उतना आनंद नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हैं प्रसाद के लिए और प्रसाद परोसते समय वो प्रेम से आपको भोजन नहीं परोसते हैं चपाती दे रहे हैं भाकरी दे रहे हैं चावलों पर ऐसे करके फेंक के लिए लेना है तो लो चाहिए क्या तो आप फिर लेंगे क्या प्रसाद उधर आप तो उठ के चले ही जाएंगे नहीं भी गए तो आपको खाने में बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी ने अच्छे ढंग से बात करके आपके साथ अच्छा बर्ताव किया आपका स्वागत किया मीठे स्वरों में बात करके अच्छी तरह से खिलाया तो फिर आप भी लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप भावना को देखते हैं भगवान भी भावग्राही जनार्दन है अपनी भावना को ग्रहण करते हैं इसलिए हमारे सेवा के पीछे जो भावना है उसको देखते हैं। दुर्योधन का भोग नहीं लिया विदुर के घर में जाके रूखा शाक लिया इसलिए श्री कृष्ण प्रेम पुजारी कहते कहलाते हैं। तो हमारी हर एक सेवा के पीछे हमें ये देखना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता हम बढ़ाएं और आपस में जब मिलजुल के सेवा करेंगे तो उस समय अवश्य कोई भिन्न मत भी हो सकते हैं भिन्न मत होते हुए भी हमें भक्तों के बीच में भेद नहीं करना चाहिए मन भेद नहीं होना चाहिए मत भेद होने के बाद भी मन भेद नहीं होना चाहिए इस तरह से एकजुट होकर हम आगे बढ़ेंगे भगवान की सेवा करते 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 फिर साथ में सब पहुंच जाएंगे फिर एक दूसरे को पहचान पाएंगे बोलो वृंदावन जाके अरे तुम थे हाँ तुम मुझसे कह रहा हूँ अब यहाँ क्या सेवा है आप क्या आप वहां हो अच्छा अच्छा आप गाय के साथ सेवा ठीक है रूप सबका बदला हुआ होगा परंतु उस श्रेणी की सेवा होनी चाहिए उसके लिए बहुत हमें श्रम करना चाहिए। तो उस भावना को विकसित करने के लिए हमें श्रवण कीर्तन बहुत करना चाहिए उस नहीं तो हमारी भावना सही नहीं रहेगी सेवा करते हुए भी बोझ बनेगा या तो भोग करेंगे सेवा का और साथ साथ में श्रवण कीर्तन के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए सेवा करनी है दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि श्रवण कीर्तन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अभी बैठ के एक जगह शांति से सुनना ये भी तपस्या है कलयुग की तपस्या ये है इसलिए कई बार क्या करते हैं, उस समय में जो सेवा मिलता है नहीं भी हो तो ढूंढ निकाल के उसी समय करते हैं, होता है कभी कभी, वो भी अच्छी बात है, कम से कम सेवा कर रहे हैं, परंतु श्रवण कीर्तन में जितना हम हो सके आना चाहिए। और जिनकी सेवा उसी समय होती है और दूसरे समय नहीं की जा सकती, तो फिर उनको सेवा करना चाहिए कि वो सेवा छोड़ के श्रवण कीर्तन के लिए आएंगे तो फिर कार्यक्रम में गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे आज हम सब यहाँ कथा में बैठे थे सुबह, तो जो प्रसाद बना रहे थे, यदि वो सब कहते हमको भी कथा सुनना है, फिर हम सब भूखे रह जाते। इस तरह से संतुलन करके हमें सेवा करते रहना है भगवान। और आप सबने बिल्कुल इसी तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा में बहुत अच्छी सेवा की है, और केवल यात्रा में नहीं, साल भर आप सब आते हैं मंदिर में, तरह तरह की सेवाएं करते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि इसी भावना से हम सब मिलकर भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। और आज की सेवा के लिए भी इतने सारे भक्तों के नाम है, जैसे हमने पहले कहा, अभी सबके नाम तो पढ़ेंगे नहीं, परंतु जिन्होंने भी प्रसाद की सेवा के लिए रसोई में या प्रसाद वितरण के लिए, फिर साउंड सिस्टम, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, और साथ साथ सारे कार्यक्रम के व्यवस्थापन सब भक्तों ने किए, उन सबको हार्दिक धन्यवाद। शायद संपूर्ण व्यवस्थापन राम प्रभु ने देखा ना, एक आदमी का नाम तो लेना चाहिए, नहीं तो सबका तो नहीं ले सकते। कहाँ है राम?
अंदर
सेवा में लगे। जय श्री राम। साथ साथ में और भी बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन सबके नाम नहीं ले सकते, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ साथ में अभी और भी कार्यक्रम है, प्राइज डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार वितरण आदि भी कार्यक्रम है, तो आप सबको भी धन्यवाद कि यहाँ आप इतना समय निकाल कर आए। हरे कृष्ण,
हरे श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा, जैसे कि हमने रथ यात्रा के समय कहा था कि जो सत्संग मंडल के सब सदस्य हैं, तो सब सदस्य जो ज्यादा से ज्यादा हर एक सत्संग मंजे जो कलेक्शन